ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अभी मुरलीधर प्रभु का अनुरोध के अनुसार हम भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 19 से पाठ करेंगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। श्लोक अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होते हैं वह मुझको कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जनकर मेरी शरण में आते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो महात्मा जगन्नाथ दास अभी तात्पर्य का पाठ करेंगे।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्री शिव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् रूपा द्वारा भक्ति आदि के अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरण लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के कारण में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण के संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव में व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। सहस्र शिक्षां पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो विद्वात्यातिष्ठत्
तशंगोलम
पुरुष एदं सर्वं यत् अद्भुतं यच्च भव्यम् छांदो के उपनिषद में कहा गया है न वै वाचो न चक्षुंषी न न श्रोत्राणि न मानसि चक्षते प्राणमिति एवाचक्षते प्राणो हि वै तानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो वे सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है।
अनेक जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान जो ज्ञान संपन्न है। पूरी भगवद गीता का उद्देश्य है अज्ञानी अर्जुन को ज्ञान प्रदान करना। अर्जुन भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, परंतु जिससे भगवद गीता का आदान प्रदान हो सकता, इसलिए अर्जुन एक अज्ञानी जैसे भगवान कृष्ण को बताया कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ा हूँ। ये एक संस्कृत शब्द है, किम कर्तव्य विमूह, जो नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ा बोलते। तो हमारा कर्तव्य क्या है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको ज्ञान देते हैं कि हमारा परम कर्तव्य क्या है। तो सब जानते हैं कि आपका कर्तव्य है नहीं, वो यहाँ पर तो अधिकांश व्यक्ति विवाहित है, और आपका कर्तव्य है तो पैसा लाना आपका संसार चलाने के लिए, बच्चे को खिलाना, स्कूल भेजना इत्यादि। तो ये सब आपके कर्तव्य है। परम कर्तव्य क्या है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जब तक हम नहीं जानते कि हमारा परम कर्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होना, तब तक हम ऐसे सोचेंगे कि मेरा परम कर्तव्य यही सब करना है। परंतु देखते हैं कि पशुओं भी उनके बच्चे को लालन पालन करते हैं, तो कर्तव्य ही है। हम ऐसे नहीं बोलते कि बच्चे को छोड़ दो, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन परम कर्तव्य क्या है इसके बारे में हमें भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ज्ञानवान मां प्रपद्यते। प्रपद्यते ये शब्द प्रपति से आते, प्रपति शरणागति, दोनों शब्द का एक ही तात्पर्य है। तो शरण, आप सब जानते हैं शरण शब्द, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे कहना है ना, आप सब जानते हैं। बालब संप्रदाय में यही वचन बहुत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो शरण लेना कैसे होते? खाली बोलने से नहीं, कैसे शरण लेना है इसके बारे में शास्त्र में वर्णन है। शरणागति क्या है? शरणागति मतलब वो रीति जिससे शरण लेना है, विशेषकर कृष्ण के चरण में शरण लेना। तो वो शरणागति में छह अंग है या चै कर्तव्य है। यथा आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वाजनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृद्वैवारणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। जरा सा पर्दा बंद करो, लाइट से ज्यादा प्रकाश आता है मेरे आंखों में। बंद करो उसको,
पर्दा बंद कर दो।
हरे कृष्ण, ये बंद करो, मैं कह रहा हूँ।
तो शरणागति में क्या क्या करना है जिससे हम वास्तव में श्री कृष्ण के शरण में आ सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवांग मांग प्रपद्यते समहात्मा सुदुर्लभ है। तो दुर्लभ नहीं है श्री कृष्ण शरणं मम बोलना, वो तो दुर्लभ नहीं है। तो सचमुच भगवान कृष्ण के शरण में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद यही तात्पर्य में वो इनके पहला मंतव्य है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब सभी प्रकार का कार्य छोड़ना ऐसा नहीं है, कुछ करना है, कृष्ण की सेवा करना है। शरणागत होने का मतलब इनकी सेवा में स्थित होना। तो सेवा का मतलब कुछ करना, कुछ क्रिया है। तो शरणागति में क्या क्या होना चाहिए? अनुकूल, प्रथम है अनुकूल यस्य संकल्प, जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, सब कुछ जो अनुकूल है हमें करना है। और जो प्रतिकूल है, द्वितीय शर्त, जो प्रतिकूल है प्रतिकूल यस्य वर्जनम, वर्जन करना चाहिए। तो हमें ज्ञानवान होना चाहिए जिससे हम मालूम सकते हैं तो क्या है अनुकूल कृष्ण भक्ति में और क्या है प्रतिकूल। इसमें आप सबका साधारण ज्ञान है, आप सब जानते हैं इसका, इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या का कुछ भी व्याख्या करने का जरूरत नहीं है कि कृष्ण भक्ति में मांस भक्षण क्या अनुकूल है या प्रतिकूल। प्रतिकूल। और प्रसाद सेवा, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना अनुकूल। तो जो कृष्ण के भक्त हो भोजन के लिए कृष्ण का प्रसाद लेते और मांस मत्स्य अंडा तो कोई सवाल नहीं है ये सब लेना। तो कृष्ण भक्ति में क्या भोजन के रूप में लेना है क्या नहीं लेना है ये सब समझना बहुत सरल है। और क्या भक्तों क्या करते हैं, तो कौन से समय उठते हैं सवेरे, 9 बजे के बाद नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, आप सब जानते हैं नहीं, ये संस्कृति आपकी संस्कृति है। और पूर्व काल में सब लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे और आजकल सब लोग तो लगभग सब, सबको सबको निंदा नहीं करता हूँ, अधिकांश को सबको नहीं, कि अधिकांश लोग तो कितने बजे तक टीवी देखते, 12 बजे तक, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं होता। तो ये राक्षसी जीवन है वास्तव में। राक्षस वो शब्द दूसरा शब्द है जिसका एक ही अर्थ है निशाचर। आप जो रामायण संस्कृत में पढ़ते यही शब्द ज्यादा मिलते हैं, निशाचर। निशाचर का मतलब जो निशा रात को चढ़ते हैं और दिन में ही सोते हैं। तो ऐसे ही आज का जीवन शैली तो उल्टा हो गया ने। तो कृष्ण भक्ति में अनुकूल है सुबह सुबह उठना जल्दी। क्यों? क्योंकि वो समय सबसे अनुकूल है, ब्रह्म मुहूर्त अनुकूल है, जाप ध्यान पूजा शास्त्र पाठ वो सब आध्यात्मिक प्रयास के लिए वो समय अनुकूल है और टीवी देखना बिल्कुल प्रतिकूल है। उससे क्या होता है, काम क्रोध लोभ ज्यादा होते हैं, नहीं होते ही नहीं कि नहीं। हाँ, टीवी देखने से और सब जो निकृष्ट है उसकी वृद्धि होती है। और गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कामस त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः। तीन से आत्मनाश होते। वो तीन क्या है, काम क्रोध और लोभ। तो टीवी देखने से तो सब आप जो सब स्वभाव से पुण्य आत्मा है तो सबको राक्षस बनाते हैं, पूरा नहीं, इसलिए आप यहाँ आया है। तो अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वाचा, हमें सीखना चाहिए क्या है अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए, क्या है प्रतिकूल। तो ये सब शास्त्र में है और कैसे ये सब विधि निषेध हम पालन करें। विधि का मतलब जो हमें करना है जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल है वो निषेध है। तो विधि निषेध शास्त्र में है और कैसे हम हमारा व्यवहारिक जीवन में ये सब पालन करेंगे, तो उसलिए हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए गुरुजन साधुजन से। क्योंकि आजकल जीवन शैली और वातावरण वैसे है और कैसे हम आधुनिक जीवन शैली में हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिससे सब कुछ अनुकूल होगा भक्ति के लिए, तो वो सब हमें गुरु और साधु जन से पूछना चाहिए। तो जो अनुकूल है जो प्रतिकूल है ये पूरी तालिका है और भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में। तो अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वाचा रक्षिष्यति विश्वासो। तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान मुझको रक्षा करेंगे और पालन करेंगे। गोपत्रद्वय वरणं तथा गीता में एक और प्रसिद्ध श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त जो सदैव मुझको चिंतन करते हैं और सदैव मेरी कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो भक्त के लिए मैं सब आयोजन करता हूँ, वो भक्त का सांसारिक प्रयोजन सब कुछ मैं देता हूँ। तो योग क्षेमं वहामि अहम् ये शब्द प्रसिद्ध है आधुनिक भारतीय जीवन में। कैसे LIC, तो भगवान कृष्ण को चढ़ के हमें विश्वास करना चाहिए LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसा ही प्रचार है नहीं, और ऐसा लिखते है योग क्षेमं वहामि अहम्। कृष्ण को अहम शब्द का मतलब कृष्ण, और आजकल हमें विश्वास करना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो ये क्या है, ये नास्तिक प्रचार है नहीं, और कृष्ण के ही विश्वास, कृष्ण में विश्वास नहीं रखना LIC में। तो ऐसा है और सर्वत्र पूरा वातावरण वैसे ही नास्तिक हो गया है। तो भगवान कृष्ण में विश्वास करना चाहिए, भगवान कृष्ण हमको पालन करेंगे, कोई दूसरे नहीं कर सकते। तो रक्षिष्यति आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप शब्द और आत्मसमर्पण तो दोनों लगभग एक ही है। आत्मनिक्षेप का मतलब तो पूरी तरह कुछ भी चिंतन नहीं करके पूरी तरह भगवान कृष्ण के चरणों में पूरा समर्पण करना और आत्मनिक्षेप विश्वास हो और कर्पण्य, इसका अर्थ है दैन्य भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे श्री कृष्ण शरणम मम बोलना कठिन है? नहीं। करना, पूरा शरण लेना, इसलिए हम तैयार है कि नहीं? वो कल वो प्रोग्राम में आप सभी उपस्थित लोग से पूछे, क्या आप क्या जीवन परिवर्तित करना चाहते हैं? उसका हाँ हाँ बोलते, लेकिन वो परिवर्तन करने में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब सुनने से लगता है तो सब तो इतना उत्साही नहीं होंगे ऐसा कहना। लेकिन जीवन परिवर्तित होने चाहिए। कौन कौन उपस्थित है कल वो हॉल में? कम लोग। तो ऐसा विषय था तो जीवन परिवर्तन करना, आप ऐसे ही बताए। और मैंने बोला कि जीवन का परिवर्तन होते हैं इच्छा से या अनिच्छा से, परिवर्तन होते हैं। हम सब जो यहाँ उपस्थित है यही शरीर में, तो 100 साल के बाद हम सब परिवर्तित जीवन कम देर से देर 100 साल के बाद, तो कोई छोटे छोकरे भी 100 साल के बाद दूसरे शरीर के अंदर में होगा। और ज्यादा 50 साल कौन 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 आशा करते हैं कि और 50 साल के बाद नहीं रहूंगे? ये मुझे नहीं, वो 50 साल के बाद आशा है, वो एकदम उसी शरीर में नहीं होगा, तो उसको थोड़ा वृद्ध होगा। नहीं, परिवर्तन हो रहा है हर एक क्षण में, तो जिससे हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जिससे वो परिवर्तन से हम मुक्त होंगे, इसलिए हमें जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए, कैसे ये परिवर्तन होते हैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, तो ये भावना से ईश्वरो हम अहम भोगी, जगत में सब कुछ जो है मेरे भोगने के लिए है, इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय सुख की इच्छा से हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम ये अवस्था में है। और उसका मूल क्या है, यही गलत फहमे कि मैं जगत के भोगता हूँ, सब कुछ जो है मेरा भोगने के लिए है, और भगवान कृष्ण के शरण लेना उसका मूल क्या है, समझना कि कृष्ण भगवान है और हम सब इनके दास है। सेवियर सेवक भाव, इसको सेवियर सेवक भाव बोलते हैं। भगवान कृष्ण सेवियर है, इनकी सेवा करना चाहिए। और सब कुछ जो हम अभी हमारी वर्तमान स्थिति में हम सब कुछ जो करते हैं, हम करते किस लिए? इंद्रियों की सेवा के लिए। तो यही परिवर्तन होना चाहिए, समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना चाहिए। यदि ये भाव पूरा मजबूत नहीं है हमारे दिल में, तो श्री कृष्ण शरणम मम बोलने से हम क्या सोचेंगे कि मेरे सब प्लान जो है भौतिक संसार में सुखी होने के लिए, वो सब भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे, भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे, जिससे मैं पूरा इंद्रिय सुख मिल सकता हूँ भौतिक संसार में। इसलिए हमें भगवत तत्व ज्ञान सुनने चाहिए, जैसे आप अभी सुन रहे हैं। सामान्यतः लोग जो किसी भक्ति का सत्संग में आते हैं तो आशा करते हैं कि हम कुछ लीला कथा सुनेंगे। लीला कथा तो बहुत सुंदर होते हैं ना, तो कैसे भगवान कृष्ण मकान चोर है, चित्त चोर है, गोपियां के साथ नाचते हैं, यही सब लीला कथा बहुत मधुर है। तो मैं वो उसी प्रकार का की कथा नहीं बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक हम पूरी तरह शरणागत नहीं हो तो तब तक वो कृष्ण लीला कथा सुनने से हम क्या सोचेंगे, ओ हमारा मन के लिए कुछ रंजन है, मनोरंजन, हम अच्छा लगता है ऐसे सुन। जो पुण्यशाली व्यक्ति वो कृष्ण लीला कथा सुनते हैं और राक्षसी लोग तो टीवी देखने रहते, जिससे काम क्रो उसमें क्या है, काम वो नंगी नारियों का नाच, आधा नंगी, और लव स्टोरी वो सब होते नहीं टीवी में, और काम क्रोध तो हिंसा खून करना ऐसे ये सब, और लोभ ऐसे चीज खरीद लो, निर्मसोप खरीद लो, आपका जीवन पूरा सुंदर हो जाएगा, ऐसे काम क्रोध लोभ का प्रलोभन है। तो कृष्ण भक्ति में शुद्ध निर्मल भाव होने चाहिए, और जब तक हम पूरी तरह विश्वास नहीं है कि मेरा जीवन का अर्थ है सभी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए और कुछ नहीं, तो वो आत्मसमर्पण है। गीता में कृष्ण भगवान का अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि समहात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं श्री कृष्ण शरणं मम, परंतु कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में मेरे चरणों में पूरा शरणागत होते हैं बहुत दुर्लभ है। तो ये सब उपदेश सुनने से क्या सब हताशा हो गया, हमारी कोई आशा नहीं है भक्ति भक्ति में? भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं नहीं, समहात्मा सुदुर्लभ, जो पूरी तरह मेरे चरणों में शरणागत है सुदुर्लभ है ऐसा महात्मा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो स्थिति शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति में स्थित होना, वो स्थिति प्राप्त करना बहुत सुलभ हो गया। इसके बारे में कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं, अनन्य चैत सततम यो मांग स्मृति नित्य शह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, कि भक्ति दुर्लभ है। ये श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति सुलभ है, अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चैत सततम यो मांग स्मृति नित्य शह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्य चैत सततम, जो सतत मुझको चिंतन करते है और कोई दूसरा विषय पर उसका ध्यान नहीं जाता है, अनन्य चैत सततम सदैव जो उस प्रकार सोचते अनन्य चैत सततम यो माम स्मरति नित्याशः, वो व्यक्ति जो नित्य सदैव मुझको स्मरण करते है। तो अनन्य चैत सततम यो माम स्मरति नित्याशः, तो प्राय एक ही वचन है, तस्याहम ऐसे व्यक्ति के लिए अहम सुलभ, मैं सुलभ हूं, कृष्ण कहते नित्य योग। फिर तीसरी बार बोलते नित्य योग्यस्य योगिनः, वो परम योगी भक्ति योगी नित्य युक्त, तो सत अनन्य चैत सततम योम स्वर्ति नित्य सह तम सुलभ पार्थ नित्य युक्त। तीन बार नित्य या सतत शब्द कहते हैं, तो ऐसा जोर से कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ ऐसे भक्त के लिए जो सदैव मुझको चिंतन करते हैं। और वो वल्लभ संप्रदाय में जिसमें श्री कृष्ण शरणम मामा वचन बोलते, तो वो संप्रदाय में एक सुंदर रीति है सदैव कृष्ण का स्मरण करने के लिए, वो अर्चन रीति है ने, जो लाला घर में रखते और दिन भर कुछ ना कुछ करना है लाला की सेवा में, ऐसी रीति है नहीं बालब संप्रदाय में। चैतन्य महाप्रभु तो जिससे हम सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, थोड़ी दूसरी रीति थी शास्त्र के अनुसार, हरे नाम आईव केवलम खलो नास्तेव के थे अन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अर्चन मार्ग भी होते हैं, परंतु विशेषकर जोर देना है हरि नाम को, क्योंकि वो सब पूजा विधि पालन करना तो सबके लिए संभव नहीं है, और विशेषकर आजकल कठिन है, तो हरि कीर्तन करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो बड़ा पंडित होना का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान शब्द का अर्थ है जो वेद वेदांत में निपुण है, शास्त्र परांगत है, जो बहुत जन्मों में बहुनाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्मों का शास्त्र अध्ययन करने के पश्चात एक व्यक्ति जो सचमुच ज्ञानवान है भगवान कृष्ण के चरण में पूर्ण आत्मा समर्पित होते, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो हरि नाम करते हैं, तो हरि नाम करने से सब ज्ञान मिलते हैं। ज्ञान क्या है, उस जो स्कूल कॉलेज में इंजीनियरिंग वो सब वो तो ज्ञान नहीं है, वो भौतिक ज्ञान है। ज्ञान शब्द शास्त्र में उसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, जो शास्त्र में है। शास्त्र का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि ऋग्वेद तो यजुर्वेद सामवेद भी अथर्वण अधीत स्थेन ये नम हरिर्त शब्द द्वयम, जो हरि शब्द कहते हैं, तो उसका कहने से हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति पूरा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद पूरा अध्ययन की चुका है, अर्थात पूरा ज्ञानी होने के पश्चात लोग उत्साही होते हैं कृष्ण नाम उच्चारण करना। तो इस हरि कृष्ण संघ जो अभी पूरा विश्व पर फैला हुआ है, तो कैसे फैला हुआ, हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन प्रचार के द्वारा और भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का तत्व ज्ञान के अनुसार, तो ये सरल विधि है सबका हरि कृष्ण कीर्तन करना। और उसके बाद क्या करना है, कृष्ण प्रसाद सेवा करना है और गीता और श्रीमद् भागवत से भगवत तत्व ज्ञान सीखना है और वो ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि टीवी छोड़ दो, 4 बजे के पहले उठो, तो कितने लोग उत्साही होंगे वो उपदेश के लिए? ज्यादा नहीं। लेकिन यदि आप रुचि मिलेगी कृष्ण भक्ति में, तो टीवी देखने के लिए और कुछ भी रुचि नहीं रहेगी। तो आजकल वो अभ्यास है सबका, तो हर रोज टीवी देखना है नहीं? कम से कम कितने, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा वो एवरेज है। और यदि इतना सा काम करना नहीं पड़ता तो और ज्यादा होता है। निवृत्त होने के बाद लोग क्या करते हैं? टीवी देखते रहते हैं। तो कम से कम निवृत्त होने के पश्चात भजन करना चाहिए नहीं? तो पूर्व काल में ऐसा होता नहीं, तो वृद्ध लोग तो ज्यादा भजन करते थे और आजकल क्या करते हैं? ज्यादा टीवी देखते हैं। कैसे समाज परिवर्तित हो गया है, तो परिवर्तन होना चाहिए। जो पुरानी संस्कृति जो थी उसको पालन करना चाहिए। तो वो तो पूरा संभव नहीं है आजकल। तो कम से कम आपके जीवन में आप हरे कृष्ण महामंत्र को प्रधान बनाए, टीवी देखना नहीं। तो यदि आप रुचि मिलेंगे हरि नाम में, तो वो रुचि नहीं रहेगी टीवी देखने से, और आप उत्साही होंगे सुबह सुबह उठना। क्या है वो नींद, क्या है वो मरण का अवस्था जैसे है नहीं, जैसे मरा होगा। तो हमें उत्साही होना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए। तो मैं खुद का जीवन के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। प्रथम बार जब मैं इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर गया था लंदन में, कितने साल के पहले, क्या बोलते हैं, 43 साल के पहले, तो वहाँ रहा रात को। और भक्तों मुझको 4 बजे उठा, तो उस समय कल्पना नहीं कर सकते कि लोग उसी समय उठते। फिर मुझको पहले मुझको नहीं बताया कि 4 बजे मुझको उठेंगे, और मुझके अनुरोध नहीं करके तो मुझे ठंडा पानी में स्नान करवाया। और इंग्लैंड में पानी जो है तो ठंडा ही है। फिर वो मुझे मंदिर जाना था, और वहां देखा कि वो सब भक्त समागत है, 4:30 बजे तो मंगल आरती करते हैं और नाचते हैं। और ऐसा लगा कि ये सब लोग तो कितने बड़े महात्मा है। तो हर रोज, तो ठंडे के मौसम में भी 4 बजे उठते हैं, ठंडा पानी में स्नान करते हैं, फिर भगवान की आराधना करते हैं नाच के नाच। ऐसा सबको इतने इतने बड़े लोग हैं, तो ऐसा जीवन बीतना चाहिए। तो वो दिन से मुझे साक्षात्कार हुआ कि ऐसे ही जीवन व्यतीत करना यही उत्तम है। और राक्षसी जीवन, टीवी देखना, काम क्रोध लोभ बढ़ना, तो वो राक्षसी है। तो आप सब चुना कीजिए, आप क्या रावण जैसे राक्षस होना चाहते? कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं। आप सब संत होना चाहते हैं नहीं? गृहस्थ संत भी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए, आप अर्जुन तो गृहस्थ थे। तो गृहस्थ जीवन में आप महात्मा बन जाए। कैसे? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हरि नाम करना, ऐसे हो सकते, संभव है, संभव है, ऐसे संभव है कि नहीं? आप बताएं आप जरा सा, शायद लोग मुझे विश्वास नहीं करते, शायद नहीं निश्चित है कोई मेरी बात विश्वास नहीं करते। आप गृहस्थ भक्त थे, आप बताएं आपका खुद का जीवन के बारे में।